परमेश्वर भगवान की अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की तीसरा पाठ मंगल चल रहा है। दो ही प्रश्न हैं इस पाठ के अंदर। मंगल उत्तम और शरण किसे कहते हैं और वे कितने हैं? मंगल भी चार हैं, उत्तम भी चार हैं और शरण भी चार हैं। नाम ज्यों के त्यों हैं, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। अरहंत परमेष्टि मंगल, सिद्ध परमेष्टि मंगल, साधु परमेष्टि मंगल और केवली प्रणीत धर्म मंगल। साधु परमेष्टि मंगल कहने से क्या सर्व साधु इतने ही आ गए? क्या समझे? साधु परमेष्टि सर्व साधु आ गए तो कौन कौन आ गए? उसमें रत्नत्रयधारी कौन कौन? आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु। मूलतः रत्नत्रय को तो धारण करने वाले चारों परमेष्टि अरहंत भी रत्नत्रयधारी हैं, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु भी रत्नत्रयधारी हैं। विदोट रत्नत्रय के मंगल नहीं हो सकते। रत्नत्रय नहीं है तो मंगलपना है ही नहीं। जहां जहां वस्त्र है वहां वहां अमंगल है, और जहां जहां वस्त्र नहीं है वहां वहां मंगल है। तो जैन धर्म में तो ये कहा है वस्त्र रहित दिगंबर मुद्रा ही मंगल। मंगल क्या है? वस्त्र रहित दिगंबर मुद्रा ही मंगल है और मंगल को ही पूजा जाता है। मंगलपना नहीं है तो पूजा भी नहीं होती। ये ध्यान में रखना है। मूल बात ये है, सिद्धांत की बात को हम ध्यान में रखेंगे तो उसको उसको सब जगह लगाया जा सकता है। सिद्धांत की बात क्या है? निर्ग्रंथ अवस्था ही मंगल है, जैनों को पूजनी वंदनी उपासनी है, बाकी सब अमंगल है। इसको सब जगह लगाना, फिर ये प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि फिर देवों के तीर्थंकरों के सेवक कहकर जो देव लोग होते हैं वो सम्यक दृष्टि होते हैं तो उनकी वंदना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए। जब मंगल में वो आते ही नहीं तो प्रश्न ही नहीं उठता कि वो पूज्य हैं कि अपूज्य हैं। वस्त्रधारी हैं तो खत्म बात। वस्त्रधारी चाहे मनुष्य हो, चाहे राजा हो, चाहे तीर्थंकर हो, अब तीर्थंकर भी वंदनीय नहीं है। ये किसने कहा तीर्थंकर वंदनीय नहीं है? तीर्थंकरों ने ही कहा है उन्हीं ने कहा है, हम भी वंदनीय नहीं क्योंकि हम वस्त्रधारी हैं। जब तक हम वस्त्रधारी हैं हम मंगल की कोटि में नहीं आते, और देव तो बहुत दूर की बात है। तीर्थंकरों के पास तो जन्म के साथ तीन ज्ञान रहते हैं, मति ज्ञान, श्रुतक ज्ञान, अवधि ज्ञान, तीन अवधि ज्ञान भी रहता है और मनुष्य को अवधि ज्ञान नहीं रहता। देवों को भी तीन ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुतक ज्ञान, अवधि ज्ञान, नियम से तीन ज्ञान होते हैं। मनुष्यों को कम से कम दो ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुतक ज्ञान, दो। और केवल ज्ञान किसको? अरिहंत को ही केवल। यानी केवल ज्ञान किस गति में होता है? फिर केवल मनुष्य गति में। जिस गति में केवल ज्ञान होता है उसी गति के जीव मोक्ष भी जाते हैं। देव गति से मोक्ष नहीं है। क्यों नहीं है? संयम नहीं है। अगर संयम आ गया देव गति में और मोक्ष भी नहीं गए, मान लो संयम तो धारण करने के योग्य हो गए और मोक्ष भी मोक्ष नहीं होता है मान लो, तो वो मंगल के कोटि में आ सकते थे क्या? नहीं। देवलोक सुना नहीं, देवलोक मान के चले कि संयम धारण उन्होंने कर लिया, कर तो नहीं सकते, कल्पना करें। देवलोक संयम भर धारण करते हैं और मोक्ष नहीं जाते हैं, तो वो मंगल की कोटि में आएंगे कि नहीं? विचार नहीं कर पाते आप लोग, दिमाग नहीं लगा पाते, यही तो घाटा हो जाता है। और दिमाग नहीं लगाने वाले लोग ही आज दुनिया में ज्यादा होने से मिथ्या तो ज्यादा है, चिंतन नहीं कर पाते, अर्थापत्ति नहीं लगा पाते हैं। देव रत्नत्रयधारी नहीं होते, हम कल्पना कर रहे हैं कि मान के चले कि उन्होंने रत्नत्रय धारण कर लिया, तो प्रश्न ये आ रहा है कि मंगल के कोटि में आएंगे कि नहीं आएंगे? देव वस्त्रधारी होते हैं, संयम धारण करेंगे तो वस्त्र कहाँ रहेगा? संयम धारण हो गया तो वस्त्र तो भी चला जाएगा, ऐसी कल्पना कर रहे हैं, तो वो मंगल के कोटि में आएंगे कि नहीं आएंगे? फिर भी नहीं आएंगे। क्या हुआ? देव मंगल में नहीं आते, हमने कहा और आपने धारणा बना ली, बना लिए तो मजबूत बना लिए, अब तो उसमें कुछ भी घुस नहीं सकता, दिवाली खड़ा कर दिया। हम कल्पना कर रहे हैं, देव मंगल है ये कहने नहीं जा रहे हैं। मान के चले कि मुनि जैसा वो कोई देव मुनि बन गया, निर्वस्त्र बन गया, संयम धारण कर, संयम कब आता है, वो वस्त्र छोड़े बिना संयम आता है क्या? तो संयम धारण करने का मतलब ये है कि निर्वस्त्र होना, निर्वस्त्र हुए बिना संयम आता नहीं है। तो कल्पना ये की जा रही है कि कोई देव संयम धारण कर लेता है तो मंगल की कोटि में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, आ सकता है, परंतु संयम धारण कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है, इसलिए मंगल की कोटि में नहीं है। अब आप छोटी सी बात को भी नहीं समझते हैं। देव कुछ लोग कहते हैं ना कि सम्यक दृष्टि है, उनकी पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए, इसका भी उत्तर नहीं बुझ पाते आप लोग। छोटी सी छोटा सा प्रश्न, वो सम्यक दृष्टि है उनकी क्यों पूजा नहीं करना चाहिए, तीर्थंकरों के भक्त है, वो रक्षक है, उनकी क्यों पूजा नहीं करना चाहिए, ऐसा कहते हैं आप, इसका भी उत्तर नहीं दे पाते हा? सम्यक दृष्टि पूजनी है क्या नहीं हा? तो ये समझाना आना चाहिए ना, कोई प्रश्न पूछता है और मौन हो जाते हैं, आपका मौन का वो लाभ ले लेता है कि बोल नहीं पाता, देखो वो कहता है मैं जो कह रहा हूँ सत्य हूँ, मैं जो कहता हूँ और करता हूँ वो सत्य मेरा होता है, ये कहता है वो। क्यों कहता है ऐसा? क्योंकि आप उत्तर नहीं दे पाते और वो ऊपर हो जाता है, आप नीचे हो जाते हैं, अज्ञान का फायदा देते हैं। आप लोग अज्ञानी हैं इसलिए सब लोग लूट रहे हैं आप लोगों को, अज्ञानियों को लूटने वाले संसार में बहुत हैं, मूर्ख बना देते हैं। तुम अज्ञानी हो तो राजनेता लूटता है, अज्ञानी हो अज्ञानी मुनि लूटता है आपको, अज्ञानी गुरु तुम्हें लूट सकता है, और तुम ज्ञानी होगे तो कोई तुमको लूट ही नहीं सकता, ज्ञानी गुरु भी आ जाए तो तुमको लूट नहीं सकता, घुमा नहीं सकता। श्रावक लूटता है वही जो अज्ञानी है, वह इधर धर्म भी नहीं कर पाता और इधर संसार भी नहीं कर पाता। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, बीच में लटकता रहता है वो, अज्ञानी जीव बीच में लटकता रहता है, धर्म भी कर रहा है तो ये धर्म भी मालूम नहीं क्यों कर रहा है, और इधर संसार भी कर रहा है तो वो भी मालूम नहीं ठीक से। एक राजनेता आपको संसार से लूटता है, धोखा दे देता है, और अज्ञानी गुरु मैं धर्म नेता कह करके तुमको लूटता है, और लूटता है ऐसा अज्ञानी जीव लूटता है। ज्ञानी जीव बच जाता है, उसमें जो ज्ञानी रहता है वो बचेगा, अज्ञानी लूटेगा। तो हम कहां कम पड़ रहे हैं, चिंतन नहीं करते, तर्क नहीं करते, विचार नहीं करते, स्वाध्याय नहीं करते, यहां कम पड़ रहे हैं। इसलिए स्वाध्याय मंडली बनाओ, बार बार क्यों हम कहते हैं, मूर्खता चला जाए अपना जीवन का सारा, हम मूर्ख बन करके कब तक रहेंगे। स्वाध्याय मंडली बनाओ, स्वाध्याय करो सामूहिक, कोई नहीं लूट पाएगा आपको, आपका धर्म भी लूट नहीं पाएगा, और धर्म से अगर आप ज्ञानी हो गए तो तुमको संसार से भी कोई लूट नहीं पाएगा, धर्म इतना हमको गहरा बना देता है कि संसार में भी, संसार के कार्यों में भी हम बुद्धिमान बन जाते, संसार में भी हम ज्ञानी बन जाते, कैसा करना चाहिए संसार वो भी रास्ता दिखने लगता है। धर्म को समझने का और धर्म को पढ़ने का अर्थ इतना ही नहीं है कि धर्म एक फालतू चीज है, उसको पढ़ने से तो केवल धर्म ही होता, ऐसा नहीं। धर्म को पढ़ने से संसार का भी वह व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है। संसार कितना कैसा करना है इसका भी विज्ञान उसके जीवन में पैदा होता है। माइंड शार्प होना चाहिए, शार्प माइंड से ही काम लेना चाहिए। धर्म को भी बहुत तर्क से देखना चाहिए, सतर्क होकर धर्म को स्वीकार करना चाहिए, ऐसा ही सतर्क होकर के ही संसार करना चाहिए। धर्म और संसार, इन दोनों में संसार को तो बहुत कुछ लोग, बहुत कुछ क्या 100% लोग सतर्क ही करते हैं, इसके बावजूद भी लोग लूटते हैं आपको, होता है कि नहीं? व्यापार धंधे में, टैक्स में, सब में लूट होती है और वो जानबूझकर आप कुछ नहीं कर पाते। उससे बचने की तरीकियां हो सकती हैं, उस संबंध में चिंतन हो सकता है। तो माइंड को शार्प बनाओगे, धर्म के जीवन को भी जीओगे, संसार के जीवन को भी निर्दोष जीओगे। रूढ़िवादी बनकर के मत चलना, किसी से घबरा करके, किसी के दबाव से मत चलना, स्वतंत्र रखना अपने जीवन को, दबाव स्वीकार ही नहीं करना किसी का। और ऐसा ज्ञान देने वाला जो होता है उनसे संपर्क रखना, हमको कैसा करना चाहिए। दबाव पूर्ण ज्ञान भी ठीक नहीं, व्यक्ति की स्वतंत्रता को लूटने वाला व्यक्ति हमें नहीं चाहिए। व्यक्ति को सेल्फ डिपेंड, उनको अपने पैरों पर खड़े होने लायक स्वतंत्र कर दे, ऐसा व्यक्तित्व हमारे लिए गुरु कहलाता है, वो चाहिए। बंधन आपको स्वीकार है क्या? गुलामी पना स्वीकार है क्या? परतंत्रता स्वीकार है क्या? तो वो नहीं चाहिए है तो स्वाध्याय करना चाहिए। जैनागम इतना अच्छा आपको संस्कार डाल सकता है, इस संस्कार से आप संसार को भी ज्ञान से करने लगते हैं, ध्यान से करने लगते हैं, सतर्क होकर के करने लगते हैं, आपको तो आपके माइंड को शार्प बनाता है। ये जैन धर्म के सिद्धांत ऐसे हैं, आप शार्प बन जाएंगे एकदम सही में। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ऐसे सिद्धांत तो दिखाओ हमको दुनिया में किस धर्म में है इतने शार्प, प्योर, फिल्टर्ड सिद्धांत। इसमें दोष ही नहीं है, बाल के बराबर बाल का खाल निकाल करके भी दोष निकालना चाहते हो तो दोष मिलने वाला नहीं है, इतना निर्दोषता है। बाकी में तो हम क्वेश्चन कर दे तो क्वेश्चन मार्क ऐसा ही रह जाता, उत्तर ही नहीं आता, ये ऐसा क्यों, कोई उत्तर नहीं उसका। पहला पासून बस एक ही उत्तर है, पाप और पुण्य, शांति और अशांति, हित और अहित, इन बातों को लेकर के जब चर्चा होती है तो इसका डिस्कस होते 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 लास्ट में एक क्वेश्चन आकर के खड़ा रहता है तो उसका उत्तर जैन दर्शन तो दे सकता, अन्य दर्शन में ये ताकत ही नहीं है। क्वेश्चन के क्वेश्चन रह जाते हैं, बस अंत में यही कहते हैं, मौन होकर के चले जाते हैं, अंत में यही कहते हैं हम बस हम जो पहले करते थे वो करेंगे। पहले पर अपना ही सत्य, असत्य भी सत्य आप आग्रह पूर्वक कहोगे मर गए, जिंदा नहीं बचे, मर गया तुम्हारा धर्म। रूढ़ी धर्म नहीं होता, रूढ़ीवाद धर्म नहीं, रूढ़ीवादी बन गए कि आप मर गए, धर्म से मरे हुए हैं, जिंदे है ही नहीं। जब तक उस रूढ़ी को त्यागा नहीं जाता, सिद्धांत के अनुरूप अपने आचरण को बनाया नहीं जाता, सत्य के अनुरूप बनाया नहीं जाता, असत्य जीवित रहता है जीवन में और वह असत्य हमारे लिए हानिकारक है। वह असत्य ही पाप है, वह असत्य ही अधर्म है, वह असत्य ही दिखावा है, नकलीपन है, वह असत्य भूसा है जिसको हजार बार भी कूटो तो एक दाना नहीं निकलता। असत्य धर्म को कूट कूट करके क्या करोगे, क्या करोगे, उससे कोई निकलने वाला है क्या? ये व्यर्थ जाता है। तो अपने को, अपनी आत्मा को, स्वयं को कैसे रखना चाहिए? निष्पक्ष रखना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए, कम से कम धर्म के क्षेत्र में। संसार में ठीक है कि ये हमारी वस्तु तुम्हारी वस्तु, ये हमारी सीमा तुम्हारी सीमा, लड़ाई झगड़े चलते हैं, वहां पर पक्षपात हो भी जाए तो खप जाएगा वो, लेकिन धर्म में चलेगा क्या? धर्म तो पुनर्भव का निर्माण सेतु है, उसमें भी रूढ़िवाद, उसी में भी आसक्ति, उसी में भी थोतापन, रोकापन, सूखापन चलेगा क्या? मान्य होगा क्या? तो कर ही क्यों रहे? धर्म व्यर्थ है करना, झूठा धर्म ही करना है तो व्यर्थ है वो। पाप है, एक्स्ट्रा पाप, संसार में तो पाप कर ही रहे हैं लेकिन धर्म में भी एक्स्ट्रा पाप कमाने के लिए आ गए और जो झूठा धर्म था उसी को करते थे, तो धोखा है कि नहीं अपने आप को? अपने आप के जीवन को धोखे में नहीं डालना, सतर्क होकर के बातों को स्वीकार करते हुए जाएंगे, स्वाध्याय करेंगे, चिंतन मनन करेंगे तो अपन सतर्क रहेंगे। थोड़ी चिंतन की शैली बढ़ाओ, तर्क की शैली बढ़ाओ, पक्षपात नहीं करना, वीतराग रहना हमेशा, जो सत्य है वो हमारा, मेरा सो सत्य ऐसा भी नहीं कहना। नहीं ऐसा नहीं करना, मैं जो कह रहा हूं वही सत्य, ऐसा नहीं कहना, जो सत्य होता है वो मेरा, हाँ जो सत्य है वो मेरा, मेरे पास मान लो सत्य असत्य मालूम नहीं है और हम करते चल रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वही सत्य, ऐसा कभी नहीं कहना। जो सत्य सिद्ध है वो सिद्ध सत्य मेरा, ऐसा ये बिंदु नोट कर लो चिंतन के लिए। मेरा सो सत्य नहीं, सत्य सो मेरा, मेरा सो सत्य नहीं, जो सत्य है वह मेरा, मेरा जो है वो सत्य है ऐसा नहीं, जो सत्य है वही मेरा है? जो सत्य सिद्ध है वही मेरा, जो मेरे में है वही सत्य है ऐसा नहीं, जो सत्य सिद्ध है वो सिद्ध सत्य मेरा। निरीक्षण करते रहना चाहिए, निरीक्षण हर सेकंड, हर मिनट, हर पल उस पर दृष्टि नजर रहना चाहिए। वो चिंतक बने बिना संभव नहीं, चिंतक व्यक्ति ही नजर रखता है क्या है क्या है क्या है। जैसे आप दुकान में नजर रखे रहते हैं ग्राहक पर, किस टाइप को क्या कौन आ रहा है, क्या खरीदेगा, मैं कैसा दूंगा, कैसा लाभ है, नजर रहती है हमेशा, कितने सतर्क रहते हैं। ऐसे धर्म में सतर्क रहना चाहिए, सत्य पर ही नजर। मैं क्या हूं इससे कोई मतलब नहीं, सत्य क्या है उस पर नजर रखे रहो और उसको उपादेय समझो, वही ग्रहण करने के योग्य है ऐसा समझो। मंगल, मंगल सत्य है, अमंगल असत्य। अमंगल असत्य क्यों है और मंगल सत्य क्यों है, इसका कारण मूल में हिंसा और अहिंसा वही। जहाँ अमंगल होता है वहाँ परिग्रह होता है, जहाँ परिग्रह होता है वहाँ हिंसा होती है, जहाँ हिंसा होती है वहाँ धर्म होता ही नहीं। बस सीधा सीधे सूत्र है ये। मंगल की सिद्धि अहिंसा से है, अमंगल की सिद्धि हिंसा से है। मंगल चार बताए गए थे, अरहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साधु मंगल और केवली प्रणीत धर्म मंगल। केवली प्रणीत, प्रणीत ने कहा हुआ, केवली भगवान के द्वारा प्रतिपादित कहा हुआ, बताया गया उपदिष्ट, केवली प्रणीत उपदिष्ट धर्म मंगल। केवली प्रणीत धर्म मंगल। अब देखना है, केवली प्रणीत धर्म मंगल, वो धर्म कौन सा? अहिंसा धर्म, बिल्कुल अहिंसा धर्म। जो कुछ भी है वह अहिंसा ही है। हमें किधर बढ़ना है, हिंसा की ओर या अहिंसा की ओर? अहिंसा की ओर। अब अहिंसा की ओर बढ़ना है तो अहिंसा के कुछ सिद्धांत हैं। इस सिद्धांत को हमें अच्छी तरह से जानना चाहिए, अहिंसा के सिद्धांत को, किस समय क्या करने से कितनी हिंसा कितनी अहिंसा, ये बार बार चर्चा हो गई है। हम कितना कहां बच सकते, अहिंसा का पालन ऐसा मत समझना कि धर्म के क्षेत्र में ही केवल किया जाता है। अहिंसा का पालन हमें संसार में भी करना चाहिए, खाते समय, पीते समय, वस्तुओं का उपयोग करते समय, उसमें कितनी हिंसा कितनी अहिंसा विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हाँ, व्यवहार में भी देखना चाहिए, व्यवहार में भी, संसार के व्यवहारों में भी हिंसा अहिंसा कितनी है। आप पानी पी रहे हैं तो छान के पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं, यही होश नहीं है तो धर्म की ओर दृष्टि है क्या? अहिंसा धर्म की ओर, धर्म पर दृष्टि नजर वहां भी रहना चाहिए। आप एक ग्लास पानी पी रहे हैं तो धर्म के ऊपर नजर रख करके पानी पियो, दया धर्म, जीवों की रक्षा, दया रहे उस पर। अपने जीवन को हमें धर्म के लायक बनाना है, अपने संसार को भी धर्म के लायक बनाना है तो आत्मा का हित है, अन्यथा पशुवत बिल्कुल अज्ञानी बनकर के जीने में कोई सार नहीं है। और ऐसे अज्ञानी बनकर के रहेंगे सब लूटेंगे अपने को, हाँ? हम हिंसक बनेंगे, हमारी हिंसा करने वाला लूटने वाला आएगा कि नहीं आएगा? हम हिंसक हैं तो दूसरा भी कोई हमारा हिंसा करेगा ही, ये बात तो समझ में आती है। हम किसी को मारेंगे तो दूसरा हमको मारेगा, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन हिंसा अहिंसा के संबंध में चिंतन नहीं करते। और सिद्धांत मूल वहां है, हाँ, धर्म करत संसार सुख, धर्म करते हुए भी संसार सुख मिलता है और धर्म करते ही मोक्ष मिलता है, निर्वाण मिलता है, निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। कहा ही है, नर त्रिरिंच समान, नर ही त्रिरिंच के समान है, त्रिरिंच में विवेक नहीं होता, वो चिंतन नहीं कर पाता, इतना डीप चिंतन नहीं कर पाता। मनुष्य चिंतन करने की योग्यता होते हुए भी उस शक्ति का उपयोग नहीं कर रहा है, प्रमादी बन के बैठा है, सुस्त बैठा है, जैसे भैंस बैठती है, भैंस बैठती गब ऐसा बैठी रहती, वो घास लाके डाल दिया तो आराम से खा लिया, सुस्त होकर के खाते समय भी सुस्ती, बैठे हुए भी सुस्ती। अब गाय देखो कितनी जागृत रहती है, प्रमाद देखो उसमें, गाय में बैल में प्रमाद ही नहीं रहता, लेकिन वही भैंस और भैंसा में देखो ये कैसे रहते, दोनों पक्षी पशु हैं दोनों, उसमें कितने अंतर है। उस गाय से और बैल से भी सतर्क रहता है मनुष्य, वो भी दोनों पशु हैं, उससे भी बढ़ करके सतर्कता मनुष्य में होती है। भैंस का दूध पीक पी करके भैंस जैसे ही बन रहे हैं हम, उसी का दही खाते हैं, उसी का छाछ पीते हैं, और यहाँ प्रवचन में आकर के क्या है महाराज क्या सुना रहे हैं, हाँ? क्या भैंस का बेटा है, भैंस का बेटा बेटी, वास्तव में जिस दूध को हम पियेंगे, स्वाध्याय में आया था, कर्मकांड स्वाध्याय चल रहा है ऊपर हमारा संघ में, उसमें आया कि निद्रा के लिए ज्यादा कारणीभूत वस्तु कौन सी है, तो ने कहा कि भैंस का दूध, भैंस की छांछ दही। दूध तो फिर भी ठीक है, दूध सुपाच्य हो जाता है, उसका जो दही है वो अगर पेट में जाएगा तो आप प्रैक्टिकल देख लेना, खूब दही छांछ वगैरह रोटी के साथ खाओ और उस दिन कोई पुस्तक पढ़ने बैठ जाओ, और एक दिन ऐसा प्रैक्टिकल करो दो तीन दिन छोड़ करके बीच में, क्योंकि असर तीन दिन तक रहता है उसका दही का, एक दिन ऐसा करके देखो कि दूध पियो, किसका, भैंस का ही दूध पियो, और उस समय देखो क्या होता है, दिन भर पढ़ने के लिए बैठ जाओ, मन लगता है कि नहीं, देखो पकड़ में आती है कि नहीं बात, सुस्ती रहती है कि पकड़, माइंड में बैठता है कि नहीं, माइंड चंचल रहता है या कैसा रहता है, ये सब अपने पेट में गए हुए अन्न का प्रभाव यहाँ रहता है और उसके आधार से हम इस विद्या को ग्रहण करते रहते हैं। कई विद्यार्थी को कंठस्थ नहीं होता, विद्या पकड़ में नहीं आती, ध्यान में नहीं बैठता, ये सब कुछ क्यों होते हैं, इसके कारण बताएं शास्त्र में, धर्म शास्त्र पढ़ेंगे तो ये सभी बातें पता चलती है। उसमें ये बताया कि दही छाछ खाओगे तो निद्रा की उदीर्णा होगी, यानी दर्शनावरणी कर्म का नो कर्म है वो, नो कर्म द्रव्य कहा। इस नो कर्म के कारण से हम जो करना चाहते हैं, जिसमें उत्साह है, उसमें ये वस्तु अन्न की वस्तु हमारे लिए बाधक बनती है। करने की रुचि बहुत रहती है लेकिन वो हम खाते पीते हैं। जो बड़े बड़े विज्ञानी होते हैं वो रोटी नहीं खाते, दूध नहीं पीते, छाछ नहीं खाते, छाछ तो और भी नहीं खाते, वो फल रस लेते हैं केवल। वहां रात दिन 24 घंटा संशोधन करना है, चिंतन मनन तर्क करना है, गहराई में उतरना है, सिद्धांतों को समझ करके नए सूत्रों को ढूंढना है, आविष्कार करना है, नया आविष्कार कुछ करना है, तो उसके लिए माइंड कितना शार्प चाहिए विज्ञानियों का। तो विज्ञानी उसके लायक ही आहार उपयोग करते हैं। जो खाते ही पचता है, आराम से पचता है, प्रमाद पैदा, शरीर में प्रमाद पैदा नहीं करता, उस टाइप का आहार खाकर ये काम करते हैं। कोई भी आज तक का विज्ञानी ऐसा नहीं हुआ जो भैंस का छाछ और दही खा करके परमाणुओं की खोज के लिए निकला हो। वहां चिंतन बहुत करना पड़ता है, दिमाग बहुत लड़ना पड़ता है, दिमाग लड़ने के लिए दिमाग पर अच्छा आहार का असर भी चाहिए, सुपाच्य आहार होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, चटक मटक नहीं होना चाहिए। चटक मटक वाला चिंतन नहीं कर पाता। आहार के तीन प्रकार हैं, तामसिक आहार, राजसिक आहार, सात्विक आहार, तीन प्रकार के आहार। तामसिक आहार बिल्कुल शरीर में तामस गुण पैदा करता है, राजसिक आहार शरीर में राजसिक गुण प्रकट करता है, और सात्विक आहार शरीर में सात्विक गुण पैदा करता है। दोनों का असर अलग अलग है। सबसे उत्तम आहार है सात्विक आहार। राजसिक और तामसिक ये दोनों त्याज्य हैं, त्यागना चाहिए। दो त्याज्य हैं, एक ग्राही है। अब इनका असर कैसा होता है देखना शरीर पर। तामसिक आहार जैसे शराब, मांस, मांसाहार और जो सड़ी गली वस्तुओं से उसी को कुछ प्रक्रिया करके वस्तु निर्माण की जाती है, यानी मर्यादा से जो बाहर है, काल मर्यादा से बाहर। सुन रहे हैं? आप लिखते समय कहां सुनेंगे? तामसिक आहार क्या है? जो हमारे पदार्थ घर के आटा है, फल है और कोई वस्तु है, ये काल मर्यादा से जो बाहर हो जाती हैं, तो अनुपयोगी हो जाते हैं ना। अनुपयोगी वस्तुओं को भी लेकर के कुछ न कुछ और बनाया जाता है, ऐसा किया जाता है कि नहीं? तो भिखारी आते हैं ना, उनसे पूछो क्या क्या करते हो, सब बता देंगे। जो आप लोगों के लिए अनुपयोगी होता है भिखारियों को दान में देते हैं और उसका उपयोग वो करते हैं। वो कौन सा आहार? जो आउट हो गया है, आउटसाइड आहार, फिर उसको भी उपयोग करके कुछ न कुछ बना करके उसमें टेस्टिला बना करके फिर प्रयोग करते हैं ना, ये तामसिक आहार। इससे संपूर्ण शरीर के सात्विक गुण नष्ट हो जाते हैं, सात्विक गुण ही नष्ट हो जाते हैं। ताजा आहार खाना चाहिए। काल मर्यादा के भीतर का आटा, काल मर्यादा के भीतर का सारा पदार्थ, मसाला, पानी काल मर्यादा से के भीतर होना चाहिए। सब्जी, हर वस्तु। अब हम अपनी जीव के स्वाद के लिए, ये जीव क्या चाहता है? स्वादिष्ट चाहिए बस अपने को। ये जीव के स्वाद के लिए हम क्या क्या करते हैं देखो। एक साल तक का आचार एक साल तक खाते रहते हैं, जबकि उसकी मर्यादा 12 घंटे की है। ताजा बनाओ, ताजा खाओ, तो ये सात्विक हो गया। कैसा? कहीं भागना है क्या? ऐसा क्यों करते आप लोग? शाम का शाम को बनाओ, सुबह का सुबह बनाओ। यदि खाते भी हैं तो मर्यादा का बाहर का नहीं कहलाता। कुछ चीजें ऐसी है जो शाम को खाएंगे तो उसकी भी मर्यादा खत्म होती है। 12 घंटे रोटी कितने घंटे की मर्यादा है? 12 घंटे, तो शाम तक उसको खत्म करना चाहिए। बच गया, आज सुबह बनाया, शाम को भी खाया और सुबह के लिए भी रखा, तो वो जो क्या होता है वो तामसिक नहीं जाता है फिर, वो तामसिक आहार हो गया। उसको शाम तक रखोगे तो वैसे तो अच्छा नहीं, परंतु फिर भी वो काल मर्यादा के भीतर है, सात्विक है। लेकिन सात्विकता का जो उसका वो होना चाहिए गुणधर्म, उसमें कमी आती है, आती जाती है। ताजा बना करके ताजा खाया, उसमें जो सात्विकता के गुण रहते हैं वो आप 12 घंटे के बाद भी खाएंगे, शाम को भी खाएंगे तो वो नहीं रह पाता। ठंडा ठंडा खाएंगे, गर्म वस्तु खाएंगे, अति गर्म भी नहीं, जैसे जीभ ही जल जाए। दाल है, रोटी है, सब्जी है, अति गर्म भी नहीं खाना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं मराठी में? थोड़ा गर्म रहता है ना उसको, कोमट। हाँ, कोमट बोलते हैं, कोमट रहना चाहिए। कोमट वस्तु जो ताजा काल मर्यादा के साथ संशोधन करके शुद्ध तरीके से बनाया हुआ है, वो कोमट वस्तु शरीर के लिए एकदम सात्विक आहार है। कोमट खाएंगे तो पाचन के लिए भी सुविधा मिलती है, सुविधा होती है, उसको टेंशन नहीं पड़ता, उस पर भार नहीं पड़ता। मशीन पर भार पड़ गया ना तो माइंड पर असर आता उसका। यहाँ भार हो गया तो यहाँ भी खिंचातानी होगी, यहाँ चूहे कूद रहे हैं तो यहाँ पर केंद्र सरकार में खबर मिलती है। तो यहाँ अपन गड़बड़ रहते हैं। यहाँ पर कोमट कोमट खाएंगे तो यहाँ पर गोमट गोमट रहेंगे। सात्विक आहार का असर व्यक्ति के लिए हितकारी है। अब राजसिक, राजसिक आहार क्या होता है? राजसिक यानी देखो, सात्विक ही आहार बनाया है लेकिन उसको स्वादिष्ट बनाया, ज्यादा स्वादिष्ट, अति स्वादिष्ट। सात्विकता में अति स्वादिष्ट नहीं रहता, सात्विक स्वादिष्ट रहता है लेकिन उसकी अतिता नहीं होती। अति स्वादिष्ट जैसे मसाला बहुत डाल दिया और ज्यादा ज्यादा ही स्वादिष्ट बना लिया, तो ज्यादा स्वादिष्ट भी ठीक नहीं। हाँ, ज्यादा तेल वापर दिया, ज्यादा उसमें मसाला डाल दिया, ये भी शरीर के लिए हानिकारक, राजसिक आहार होता है वो। अब राजसिक आहार काल मर्यादा के भीतर ही रहता है, लेकिन अति स्वादिष्ट है तो उसमें क्या है, इंद्रियां उद्विग्न हो जाती, व्यक्ति विषयों की ओर भागने लगता है, फिर खाने पीने की ओर ही उनका ध्यान जाएगा। जो राजसिक आहार खाता है उसका मन भी आहार में अटक जाएगा, उसकी इंद्रियां भी आहार में अटक जाएंगी, आकर्षण उधर रहेगा। और जो राजसिक खाना भी छोड़ दिया, उनको तो तामसिक ही अच्छा लगता है, तो व्यक्ति तो किसी काम का ही नहीं। तामसिक आहार खाना तो नारकी जीवन जीना है। तामसिक आहार जैसे मांस, व्यक्ति मांस खाता है तो कितने घंटे में पचता है, वो 8 घंटे लगते। डॉक्टर बताते हैं मांसाहारी को मांस 8 घंटे में पचता है और शाकाहारी को शाकाहार 4 घंटे में पचता है, डबल टाइम चाहिए। अब मशीन के लिए कितनी ताकत चाहिए उसको पचाने के लिए, वो सारा ताकत उसमें लग जाता है। वो जब लग जाता है तो शरीर थक जाता है जल्दी, शरीर थकता है तो प्रमाद आता है तो कोई काम अच्छे नहीं लगते, धर्म अच्छा नहीं लगेगा, सात्विक कार्य अच्छे नहीं लगेंगे, बस सुस्त कैसे बैठेगा बेंच जैसा, सुस्त होके बैठ जाएगा। ऐसा क्यों बैठे हो, क्या है, दर्द है, वो है। ऐसा क्यों होता है, सात्विक भोजन न करने का परिणाम है। गर्म पानी हमेशा पियेंगे ना, कोमट पानी, गर्म पानी, महाराज लोग कैसे पीते, गर्म रहता है, गर्मी में भी कोमट, ठंडी में भी कोमट से ज्यादा, थोड़ा सा 5% गर्म ज्यादा होता है ठंडी में, बरसात में कोमट। आप गर्मी में क्या चाहते हैं, बिल्कुल गारे गार जैसा ठंडा पानी पीने, इच्छा तो यही रहती है, लेकिन वो पानी नुकसान करता है, बार बार प्यास लगती है, आपको एक आधा घंटे के बाद पुनः वही पीने की इच्छा होगी। जितना ठंडा पानी पियोगे, गारे गार खाओगे, बर्फ खाओगे, आइसक्रीम खाओगे, उतना ही आपके शरीर में प्यास और बढ़ेगी। भीतर एक अग्नि होती है, जिस अग्नि में आप ठंडा कुछ दे दोगे, अग्नि बुझती नहीं, वो दुगुनित होती है। और उस अग्नि को अग्नि ही दे दो तो समान बनी रहती है। कोमट पानी पीते हैं मुनि महाराज, गर्मी के दिन में भी तो तकलीफ अनुभव करते, और दिन भर उनको एक बार भी प्यास नहीं लगती, क्या प्यास सहन करते, सहन करने की जरूरत ही नहीं, गर्म पानी पियोगे तो एक बार भी पी लो तो दिन भर प्यास नहीं लगती। ये अनुभव की बातें हैं, और जो अनुभव की बातें वो शास्त्र में लिखी हुई है। शास्त्र में ऐसा क्यों कहा कि गर्म पानी पीना चाहिए, इसलिए कहा साधु को, साधु गर्म पानी पिएगा तो 24 घंटे में तो एक ही बार खाना है और एक ही बार पीना है, गर्म पानी पिएगा तो उसको 24 घंटे क्या दूसरे दिन अंतराय भी हो जाए तो प्यास लगेगी नहीं, ये गर्म पानी में ताकत है। गर्म पानी पीने वाले को ज्यादा प्यास नहीं लगती, और एक बार भी पानी पी ले तो उसका काम चल जाता है उनका। और संसारी जीवों की धारणा इससे उल्टी रहती है, गर्म पानी पियेंगे तो ज्यादा प्यास लगेगी, ठंडा पियो तो प्यास बुझ जाएगी, कहाँ बुझती है, दुगना बढ़ जाती है प्यास। आहार कोमट, आहार कोमट, पानी कोमट, ये सात्विक भोजन। इस सात्विक भोजन से अपना जो जीवन बनता है वो सतर्क पूर्ण बनता है। गाय की तरह, बैल की तरह सतर्क रहते हैं, घोड़े की तरह सतर्क। घोड़े और गधे में कितना अंतर है? गधा प्रमत्त है, घोड़ा चालाक। अजगर सांप सुस्त है, नाग भूस एकदम इधर उधर देखता है, कितना चालाक है, कितनी होशियारी है उसमें, कितनी जागृति है, सतर्क है वो। सतर्क रहेंगे तो हम पाप से बचेंगे, सतर्क रहेंगे तो ज्ञानी बनेंगे, और उस वैसा बनने के लिए पूरा आहार पर डिपेंड है हमारा जीवन। आहार का सुधार करना चाहिए, और ये सुधार हो सकता है, करते नहीं, कौन करे, कौन इतना मेहनत करे, मैं जैसा कैसे मिल गया खा लिया, पशु का जीवन जी रहे, और वही बच्चों को खिला देते हैं तो वो बच्चे पास भी नहीं होते, उसकी बुद्धि नहीं बढ़ती, और यही बच्चा कल का नेता बनेगा, भैंस का ही काम करेगा, गधे का काम करेगा वो नेता बनकर। आपके बच्चों को आप गधे बनाते हैं, मुख्य भूमिका माँ की है, उसको गधा बनाना क्या घोड़ा बनाना, ये डिपेंड माँ के ऊपर होता है। माँ जैसे भोजन कराएगी वैसा बच्चा बनेगा, उसका माइंड ऐसी रचना होती जाएगी, माइंड की संरचना भोजन पर निर्धारित है। पहले के लोगों में खाने पीने की तरीका ही नहीं थी, कुछ समय पहले, बहुत पहले तो थी, बीच में बिगड़ गया है, और आजकल थोड़ा सा सुधार आ रहा है, लेकिन आजकल के बाजार की जो चीजें आ रही हैं, वो बहुत खराब आ रहे हैं, जैसे बिस्किट हैं, ब्रेड हैं, ये बेकरी सामान बिल्कुल बेकार हैं, बेकरी सामान पाश्चात्य संस्कृति, विदेशों से यहाँ बिकने आ रहे हैं बिस्किट वगैरह, और ऊपर लिखा रहता है झूठ इंडियन, और उसमें झूठ सिक्का रहता है हरा चौक शाकाहार लिखा रहता है, लेकिन है वो मांसाहार, चर्बी डालती डली जाती है उसमें। ये व्यापार धंधा के लिए जो आहार सामग्री बाजार में आ रहे हैं ये शुद्ध है ही नहीं, उनसे बच्चों को बचाना चाहिए। बिल्कुल, अभी बहुत डालते, अपन जब ये कोल्हापुर में थे तो एक पेपर में आया सकाल में, बिस्किट आजकल धोखे में, उस पर उसको चेक करके पकड़ा गया, उसमें चर्बी निकली, तो सरकार के लिए इसको खबर दिया गया कि ऐसा चल रहा है, इसको चेक करवाना चाहिए और वो करना चाहिए। संविधान तो ऐसा है, कानून तो ऐसा, कानून से तो उसमें डालना निषिद्ध है, हरा सिक्का जिसमें रहता है उसमें डालना निषिद्ध है, और फिर भी डाला जा रहा है। और ये धोखा किसको, शाकाहार प्रिय जो लोग हैं, जो अहिंसा से चलना चाहते हैं, उनके लिए धोखा हो रहा है ना। इसमें सरकार भी मिली जुली रहती है, सरकार भ्रष्ट है आज, उसका हिस्सा उनको भी मिलता होगा तभी तो चेक नहीं करते, अनुशासन नहीं रखते, तो ये भ्रष्टाचारी चल रही है। इसलिए आप जैसे शाकाहारी प्रेमियों को समझना चाहिए कि अपने बच्चों को इन वस्तुओं को देना ही नहीं, चाहे उसके ऊपर हरा हो चाहे लाल हो, बाजार से लाना ही नहीं, बिस्किट बनाना हो घर में बनाओ, एक बार बना के रख दो उसको, उतने उतने बना लो खाओ। यार जहाँ बनता है वहाँ बना के ले आओ, शुद्ध पदार्थ वहाँ ले जा करके दे दो, बना के ले आओ, अपने बच्चों को दो, चॉकलेट बिस्किट बाजार का नहीं देना, घर का बनाना और घर का ही देना। बहुत ही अशुद्ध है, नरक का मार्ग है वो आहार। मांसाहार, एक कण मांस खाने वाला भी नरकायु का बंद कर सकता है। तो फिर इस चॉकलेट और बिस्किट में तो जो आहार ही है पूरा, क्या अपने संतान को नरक भेजना है? अपने संतान को इनको खिला करके उसकी बुद्धि बिगाड़ करना है क्या? पाप में ढकेलना है क्या? क्यों प्रमाद करे महिलाएं अपने बच्चों को? बिस्किट है चॉकलेट है क्या घर में नहीं बना सकते? दीपावली आ गई तो लड्डू बनाते हो, बनाते हो कि नहीं? तो वैसे बच्चों के लिए हर दिन दीपावली चाहिए, उनको चॉकलेट चाहिए, उनको बिस्किट चाहिए, वो हट करते हैं आपसे। हट करने पर आप बनाते नहीं, आपको प्रमाद है तो उस प्रमाद के कारण से पैसा ही दे देते हैं हाथ में और वो जाकर के बाजार में खा लेता है। पैसा हाथ में नहीं देना बच्चों को, क्या चाह रहा है वो वस्तु देना, जितना चाहिए उतना ले लो, लेकिन पैसा नहीं मिलेगा। तो तुम्हारे बच्चे जैन बनकर जैन धर्म की रक्षा करेंगे, मांसाहारी बनकर कोई जैनी नहीं कहलाओगे आप। जैनी मांसाहारी होता है, और फिर यही माता पिता उस बच्चे को 8 साल बड़े होने के बाद एक तरफ तो पैसा दे रहे हैं, वो बाजार में बेकरी सामान लाके खरीद के खा रहा है, और एक तरफ ये 8 साल का उम्र हो गया तो मुंजी 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 बना रहे हैं। क्या मुंजी मुंजी बना रखा है क्रियाकांड। झोली में क्या मिला तो बिस्किट मिले हा? और वहाँ पर 8 मूल गुण धारण करके आए हैं, चॉकलेट भी डाल रहे हैं हा? धर्म इतना सस्ता हो गया है ना, मतलब हिंसा अहिंसा का ख्याल ही नहीं है। इतने प्रमादी, क्या इसमें जैनत्व है? 8 मूल गुण आपके कहाँ हैं? 8 मूल गुण ही नहीं है तो क्या जैन है आप? ये प्रमाद ठीक नहीं, ये प्रमाद को ही हटाना चाहिए। जरा सा सतर्क हो जाएं और प्रमाद को हटा करके घर में काम करने लग जाएं तो अपना धर्म अपने घर में बचेगा, जैनत्व की सुरक्षा होगी। महावीर ने कहा कि 8 मूल गुणों का पालन करो, मुंजी करो तुम्हारे बच्चे। मुंजी का मतलब क्या है? वहाँ अशुद्ध वस्तु तामसी पदार्थ को नहीं खाना, ये 8 मूल गुण है। बच्चों को तामसी पदार्थ नहीं खिलाना, जैसे बाजार की बिस्किट उसमें मांसाहार है, चॉकलेट मांसाहार है, गुटखा मांसाहार, इन वस्तुओं से बचाना, इन व्यसनों से बचाना, शराब से बचाना। बचपन से बचाओगे, नियम दिलवाओगे तो फिर वो शाकाहार से बचेगा आपका बच्चा, उसके जीवन में जैनत्व बचेगा, जैन धर्म बचेगा, शाकाहार बचेगा। उधर हम ध्यान नहीं देते, वो रोने लग जाए तो बस पैसा दे दिया और भेज दिया। यही प्रमाद है, इस प्रमाद के कारण से धर्म का विनाश हो रहा है, अधोगति हो रही है, धर्म की यही अधोगति हो रही है। मुख्य अधोगति प्रमाद। क्या आप लोग नहीं जानते चॉकलेट बनाना है? नहीं जानते तो जो जहाँ जिस दुकान में बनाते लोग जो जानते हैं उनको सामान दो, उसका किराया दे दो, एक बार बना के लाओ, शुद्ध शाकाहार से बना के लाओ, बिस्किट चॉकलेट। अब बच्चे मांगते हैं तो देना ही पड़ता है, बाजार से खाने से तो उनको बचाना है, ये करना चाहिए। जैन धर्म की शुरुआत यहीं से होती है, ये प्रथम सीढ़ी है जैन धर्म की। खान पान में शुद्ध रहो, ये प्रथम सीढ़ी है। इसके बिना तो जैन धर्म की शुरुआत कहीं से कहीं तक नहीं होती। खुद मांसाहार करोगे, बच्चों को मांसाहार, बाजार के सामान खिलाओगे और यहाँ आकर के नौपी करोगे 10 दिन, क्या फायदा है इससे? 8 मूल गुण नहीं और ये क्रियाकांड करनी यहाँ आ गए, इससे कोई कर्म की निर्जरा नहीं होती। करना न करना बराबर है। यहाँ आए, जितना पुण्य कमाया उसको पाप में वहां जाकर के खराब कर दिया। दुकान गए, 1 लीटर दूध ले आए और घर में जाकर के उसमें छाछ में मिला दिया और उससे चाय बना करके पी रहे हैं। 1 लीटर दूध में, दूध को 1 लीटर छाछ में मिला दिया, दुकान से लाते ही मिला दिया और उसमें चाय में डाल दिया, पी रहे, चाय अच्छी नहीं लग रही है। महाराज चाय भी पीना चाहिए कि नहीं? मैंने कल कहा था कि चाय भी क्यों पी रहे हो? प्रमाद छोड़ना, ये जो घर की क्रियाकलाप है इनमें कुछ सुधार लाओगे तो तुम्हारा मंदिर आना सार्थक, स्वाध्याय करना सार्थक, जैन धर्म संस्कृति बच गई घर में, इतना ही तो धर्म कर सकते आप। मुनि में और आप में कितना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है संयम में। सिर्फ इतना ही करना है, मुनि को जो आहार देते हो वैसा तुम खुद खाओ, रोज खाओ, बच्चों को खिलाओ। कितनी स्वच्छता से, कितनी मर्यादा से आप बना रहे हैं, वो मर्यादा आप रोज रखने में क्या दिक्कत हो रही है? जरा सा प्रमाद छोड़ना पड़ता है ना इसके लिए। आटा की मर्यादा 3 दिन, 7 दिन, 5 दिन, जितने भी कहा है, इतना ही तो ध्यान में रखना है मौसम के हिसाब से। उसमें प्रमाद कर लिया तो ठीक नहीं, जितना चाहिए उतना पीस के लाए रखा। एक दिन आगे पीछे बात अलग है, पर आपने एक साथ ही 10-15 दिन का आटा पीस के लाए और घर में रखे, घर में चलता है कि नहीं? ये आपके घर में आपने देखा है इसलिए तो बोल रहे हैं। देखो, महावीर भगवान ने कहा है धर्म बचेगा भी महिलाओं से, मिटेगा भी महिलाओं से। धर्म इसी पर निर्धारित है, स्वच्छता अस्वच्छता, भक्ष अभक्ष, यहीं से शुरू होता है धर्म। कैसा रहना चाहिए जैन है? स्वच्छ, झल 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 स्वच्छ रहना चाहिए, सात्विक। हाँ, कपड़े कितने स्वच्छ रहते हैं, इनको देखने से ऐसा लगता है कि खाते पीते भी इतने ही स्वच्छ होंगे। बाजार में अपने आप को इतना साफ स्वच्छ दिखा रहे हैं, शरीर को ही केवल साफ स्वच्छ दिखा रहे हैं। ठीक है, कम से कम इतना तो आ गया, नहीं तो ये भी मैले होते। हाँ, सुधार लाना ही है, संकल्प लो, प्रमाद छोड़ो और संकल्प लो। जैन धर्म की रक्षक महिला, जैन धर्म के भक्षक भी महिला। उनकी आप जड़ों में खाद दे रहे हैं और ये ऊपर की शाखा है पुरुष। जैसा तुम नीचे डालोगे वैसा वहां फल पकने वाला है। बचपन से आपने अपक्ष खिला दिया, मांसाहार खिला दिया, तो नेता भ्रष्टाचारी बनेगा, देश का हित करेगा, अहित करेगा, क्या करेगा, ये भविष्य भी तो देखो। बेटा व्यसनी बनेगा कल जाकर के, क्या निर्वसनी रहेगा, हमारा हित करेगा क्या अहित करेगा, तुम्हारे बेटे पर तो तुम्हारा जीवन निर्धारित है। व्यसनी बन गया मान लो, तुम्हारा कमाया हुआ सब मिटा देगा वो। तुम अवक्ष इस प्रकार से मांसाहार सिखाओगी तो कल के दिन शराब भी पिएगा। जो मांस खाता है वो शराब पीने की इच्छा करता ही है, होगा ये। और कल के दिन वही बच्चा बड़ा बनेगा, वही समाज का नेता बनता है, कल के दिन राज्य का नेता बनता है, देश का नेता बनता है, उसके दिल में दया नहीं रहती, दया समाप्त। सारा दायित्व आप लोगों पर है, खान पान को सुधारो, यहीं से धर्म की शुरुआत होती। मुनिराज आ जाए गांव में, उस समय तो तुम इतने शुद्धि से भोजन बनाते जैसे तुम्हारे कपड़े स्वच्छ रहते हैं, वैसे आहार देख करके ऐसा लगता कितना बढ़िया आहार हमको लगता। लेकिन आप लोग रोज जो खाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, वो भी एक दिन जाकर के देखूं तो कैसा लगता देखे। आ जाऊं एक बार देखने किसी के घर भोजन के वक्त क्या क्या खा रहे हैं और कब का है और कैसा क्या क्या उपयोग किया है, चेकिंग करने के लिए आ जाऊं। गृहस्थ धर्म इनके यहाँ है क्या नहीं देखने के लिए आ जाऊं। और आ जाऊंगा तो सबसे पहले समालोचना होगी आप लोगों की, ये क्या खिला रहे तुम परिवार को, आपको ही कहेंगे हम। इसको बच्चे खाएंगे, आपका पति खाएगा, तुम अपने जीवन को बनाना चाहती है कि मिटाना चाहती है, सबसे पहले आक्षेप इन्हीं पर आएगा। वो पुरुष कहेगा मैं क्या करूं, जो बनता है वो खाता हूं, इतना ही कहता है वो, जो बनता है मैं खाता हूं। बच्चे भी कहते हैं हमको मम्मी ने दिया था हमने खा लिया, हमको क्या मालूम। तो सारी जिम्मेदारी मम्मी की है। परिवर्तन, सबसे पहला परिवर्तन ये कर लेना, साधनाएं जरा कम करना। अब तो उसमें जरा छूट दे रहा हूं, उसको टाइम लगता है ना, पीस करके रखना, वो करना है, स्वाध्याय के लिए टाइम नहीं बचेगा फिर तो कोई बात नहीं। इसमें एक घंटा स्वाध्याय करते हैं तो 15 मिनट उधर ले लो, पौन घंटा स्वाध्याय करना। परंतु सबसे पहले कौन सा काम करना, सभी घर की खाने पीने की वस्तुओं को शुद्ध बना करके पैक करके रखना, योग्य स्थान पर रखना, जहाँ पर जीवाणु उत्पन्न न हो सके, त्रस जीव न पड़ सके, उस स्थान पर रखना। सबका ख्याल रखना, परिवार का, पति का ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना, और किसका, सासू का ख्याल रखना, क्योंकि उनको आंसू न आ जाए। सासू है आंसू बहुत जल्दी आते। सबका ख्याल रखना, खान पान का सबका ख्याल रखना पहला काम। फिर वस्त्र में साफ है क्या गंदे हैं, एक दिन चूक भी जाए तो चलता है, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो भोजन तो अंदर जा रहा है, वस्त्र तो ऊपर है, ज्यादा नुकसान नहीं करते। हम कभी स्नान ही नहीं करते, हमारा कुछ बिगड़ रहा है क्या, नहीं बिगड़ता। लेकिन स्नान नहीं करते कह करके आप जो खिलाओगे वही खा दें, जो आपके डेली रूटीन का भोजन है वो हमको भी दे दें, जो आप अपने बच्चों को देते वो हमको देते, वैसा हम करने लग जाएं, तो पेट में भी अशुद्ध भोजन जाने लग गया तो क्या हमारा धर्म बचेगा? अहिंसा बस विष बचेगा, संयम चला गया। अब आप मेरी वंदना कर रहे हैं तो क्या शरीर की वंदना कर रहे? शरीर वंदनी है, जाति वंदनी है, कुल वंदनी है, पिंचिकमंडलू वंदनी है, नग्नत्व वंदनी है, नहीं कोई भी वंदनी इसमें एक भी वंदनी नहीं है। वंदनी है संयम, और संयम क्या है? तुमने जो भोजन खिलाया उसमें हिंसा नहीं हुई थी कुछ भी, और ऐसा शुद्ध भोजन अपने हाथ में मिला और वो पेट में गया है, स्नान नहीं किया है, ऊपर से तो हम गंदे हैं लेकिन पेट में कैसा भोजन किया? संयम का भोजन अंदर गया है, उसकी वंदना आप करते हैं। जिस भोजन को दिया है ना, उसके कारण से हमारा अहिंसा महाव्रत बच रहा है, उस अहिंसा महाव्रत की आप वंदना करते हैं। पानी छान करके लाए, जीवाणी करके लाए, ये एक भी जीवाणु मरने नहीं दिया, इतना सावधानी से पुनः उसमें छोड़ दिया, उस जल से आपने भोजन किया, ये संयम है। आपने संयम पालन किया इसलिए मुनि व्रत टिके। और आप छानते नहीं छान गए होते और जीव उसी में होते, वैसा ही गर्म कर लिया होता और महाराज के पेट में गए होते तो उनका संयम समाप्त। आप किसकी वंदना करोगे? उपासक कौन, फिर उपासक कौन? कोई डिफरेंस रह आ गए? दो नीव होती समाना, ये वो बिना संजदो होती, दोनों एक ही समान है। मुनि भी अवक्ष खाने लगे, मुनि भी श्रावकवत भोजन करने लगे, वही हिंसा का भोजन करने लगे, तो मुनि में और श्रावक में कोई अंतर नहीं है, वो भी असयमी ये भी असयमी। अब उपास कौन, अनुपास कौन? बहुत जिम्मेदारी है महिलाओं की। महिला परिवार की, समाज की, देश की नींव में काम करती है, मूल में काम करती है, जड़ है। तुम जैसे खुद खाओगी वैसा ही परिवार बनेगा, वैसे ही संस्कार आएंगे, वैसा ही समाज बनेगा, वैसा ही देश बनेगा। उसी के आधार से भगवान महावीर का भी धर्म टिकना नहीं टिकना ये बात रहेगी उसमें। सब आहार पर डिपेंड है, और आहार का शुद्धिकरण अहिंसा के उद्देश्य से है। भक्षा भक्ष, आहार पदार्थ की मर्यादा खत्म हो गई तो त्रस जीव आ गए उसमें, वो मांसाहार बन गया, द्विंद्री जीव उत्पन्न हो गए वो उस मांसाहार में। और 10-15 दिन का रखा हुआ आटा, साल भर रखा हुआ या 6 महीने तक रखा हुआ वो अचार, ये मांसाहार है घर का, घर का मांसाहार है ये। और वही रुचि लगती हो तो मांसाहारी आप नहीं, केवल जीव के लिए जी रहे हैं और केवल इसकी रुचि के लिए मांसाहारी होते हैं, वो नरक का टिकट लेते ही है। सभी पदार्थों की मर्यादा का एक चार्ट बना लो और अपने घर में उसको लगाओ, उसके अनुरूप अपना आचरण बनाओ। उसमें देखना इधर तैयार करना, उसमें देखना इधर तैयार करके रखना, उसके अंदर उसका उपयोग करना, इतना भी कर लोगे तो तुम हजार उपवास करने का जो फल मिलता है वो इसमें मिल जाएगा। आज महिलाएं मंदिर में 10 लक्षण कर रही हैं, 10-10 उपास करती, और पूछा जाए घर में कैसा है आहार विहार, सब आहार की पद्धति, कहा प्याज खा रहे हैं, उसमें कोई आटा की मर्यादा नहीं है, कुछ नहीं। 10 उपास किया, ये 10 उपास फल देंगे। उपास तो एक तप कहलाता है। अवक्ष कह करके तप करेंगे तो कोई कर्म की निर्जरा होगी, धर्म होगा। पहले खान पान सुधारना है। खान पान सुधर गया तो तुम एक भी उपास कर लो, 1000 उपास के समान है वो, उसका पूरा पगार मिल गया। जो शुद्ध खाते हैं, जिस घर में शुद्ध खान पान है वहीं जैन धर्म है। जिस घर में खान पान शुद्ध नहीं है वहां महावीर नहीं, उस घर में, उस घर में दिगंबर गुरु नहीं, उस घर में वीतरागी शास्त्र नहीं, वो घर सोना है, श्मशान है, श्मशान के समान है। और उस घर में रहने वाले सभी शव हैं, चलते फिरते शव। शव तो वैसे चलते नहीं फिरते हैं, लेकिन चलने फिरने वाले शव हैं। हम धर्म से मर गए हैं तो हम चलते फिरते शव तो हैं। कुंदकुंद आचार्य ने कहा है अष्टपाहुर में, महावीर भगवान ने भी कहा है, उन्हीं सूत्रों को उसमें लिखा है। महावीर भगवान से पूछा गया, भगवान रत्नत्रय रहित साधु को क्या माना जाए? रत्नत्रय से रहित, संयम नहीं, अहिंसा नहीं, सत्य नहीं, अचौर नहीं, ब्रह्मचर्य नहीं, 5 महाव्रत नहीं, उस साधु को क्या मानना चाहिए पूछा गया। तो उसको भी कहा उन्होंने, ऐसा साधु नग्न अवस्था में चलता फिरता शव है, शव मुर्दा। साधु में प्राण कब होते हैं? रत्नत्रय होने से। रत्नत्रय असली प्राण है, रत्नत्रय असली प्राण है। वो प्राण हो तो साधु जीवित है, और रत्नत्रय नहीं है तो साधु मरा हुआ है। शरीर घूम रहा है लेकिन साधु का धर्म मर गया है तो साधु मरा हुआ है। उसको चलता फिरता शव ऐसा कहा, चलने फिरने वाला शव। शव चलते फिरते, लेकिन ऐसे भी शव होते हैं जो चलते फिरते हैं। उन शवों का आविष्कार महावीर भगवान ने किया, उन्होंने ढूंढ निकाला। ऐसे भी शव होते हैं जो चलते फिरते हैं, मरे हुए रहते हैं, मतलब रत्नत्रय से रहित दशा। मंगल, जो पाप मल को गलन करे उसे मंगल कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, मंगल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? मम अर्थात पाप मल, गल अर्थात गलन करने वाला। मंगल तो साधु हैं, मंगल तो अरहंत भगवान सिद्ध भगवान हैं। ये हमारे पाप मल को गलन करते हैं, हमारे पाप को नाश करने में ये निमित्त बनते हैं। कब? रत्नत्रय होने पर, क्या रत्नत्रय नहीं होने पर? रत्नत्रय धारी साधु का, साधु की वंदना की, पूजा की, उस समय आपका पाप कर्म का निर्जरा होगा, या रत्नत्रय रहित साधु की वंदना की उस समय पाप कर्म की निर्जरा होगी, है ना? तो मंगल शब्द कितना अर्थपूर्ण है देखो, वो बता रहा हूं मैं। मम यानी पाप मल, गल यानी गलन करने वाला, नाश करने वाला, जो हमारे पापों को नाश करने में समर्थ हो, ऐसे साधु की अवस्था हमारे लिए मंगल है। तो मंगल रत्नत्रय से हुआ ना, जीवन में रत्नत्रय होने से साधु मंगल हो गए ना, तो रत्नत्रय की वंदना करने से पाप कर्म नाश हो रहा है ना आपका, रत्नत्रय की पूजा करने से पाप कर्म नाश हो रहा है ना, इसलिए रत्नत्रय धारी को ही मंगल कहा। और वो मंगल क्यों कहा, वो मंगल में ये ताकत है कि आपके पाप कर्म को भी नाश करने के लिए वह निमित्त बन सकता है। शब्द देखो कितना गहरा है, अर्थ रखता है। मम यानी पाप और गल यानी नाश करने वाला, मंगल होना चाहिए तो ही हमारा पाप नाश हो सकता है। मंगलपना ही नहीं है तो पाप का हमारा नाश होने के बजाय पाप बढ़ सकता है। रत्नत्रय रहित साधु की वंदना करो, क्या होगा, पाप नाश होगा क्या, पाप बढ़ेगा हा? पाप बढ़ेगा ना, तो मंगल है कि अमंगल है, वो साधु साधु अमंगल है। रत्नत्रय नहीं हो तो साधु अमंगल है, और रत्नत्रय हो तो साधु मंगल है। और रत्नत्रय की रक्षा किससे हुई, आपके घर में आकर जो भोजन लिया गया वो निर्दोष था, इसलिए रत्नत्रय है, संयम है। अगर वो शुद्ध भोजन नहीं मिलता तो रत्नत्रय संयम नहीं होता, और संयम नहीं है तो अमंगल है। अब उस साधु की पूजा करके क्या करोगे, पाप कर्म का बंद करोगे या पाप कर्म की निर्जरा करोगे, अशुद्ध खिलाया साधु को, संयम तो चला गया, अब तुम पाप बंद करोगे कि पुण्य बंद करोगे, पाप बंद। इस तरह से पाप बंद होता है, साधु की वंदना से आप पाप का भी बंद कर सकते हैं और पुण्य का भी बंद कर सकते हैं। टाइम हो गया,
प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से